भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के आठवें स्कंध के छठे अध्याय जिसका शीर्षक है देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा और उसकी श्लोक संख्या है 11, इसकी ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। त्वया माया त्वयाश्रया स्वयेदम् निर्माय विश्वम् तनु तदनु प्रविष्टः पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यायप्यगुणं विपश्यतः। अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। शब्दार्थ त्वं आप माया अपनी नित्य शक्ति द्वारा आत्म आश्रया जिसका अस्तित्व आपकी शरण के अधीन है स्वयं आपसे उद्भूत इदम यह निर्माय उत्पन्न करने के लिए विश्वम सारे ब्रह्मांड को तत् उसमें अनुप्रविष्ट आप प्रवेश करते हैं पश्यन्ति वे देखते हैं युक्त आपके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति मनसा मन से मनीषिणा उच्च चेतना वाले लोग गुण भौतिक गुणों के व्यवाय रूपांतर में अपि यद्यपि अगुणम भौतिक तत्वों से अछूता विपश्चितः शास्त्र के सत्य से भली भांति भिज्ञ लोग। अनुवाद हे परम पुरुष आप अपने में स्वतंत्र हैं और दूसरों से सहायता नहीं लेते। आप अपनी शक्ति से इस दृश्य जगत का सृजन करके इसमें प्रवेश कर जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में बड़े चढ़े हैं जो प्रामाणिक शास्त्रों से भली भांति परिचित हैं और जो भक्ति योग के अभ्यास से सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं वह शुद्ध मन से ये देख सकते हैं कि आप भौतिक गुणों के रूपांतरों के भीतर रहते हुए भी इन गुणों से अछूते रहते हैं। मेरे विजय धराइए हे परम पुरुष आप अपने में स्वतंत्र हैं और दूसरों से सहायता नहीं लेते। आप अपनी शक्ति से इस दृश्य जगत का सृजन करके इसमें प्रवेश कर जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में बड़े चढ़े हैं जो प्रामाणिक शास्त्रों से भली भांति परिचित हैं और जो भक्ति योग के अभ्यास से सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं वह शुद्ध मन से ये देख सकते हैं कि आप भौतिक गुणों के रूपांतरों के भीतर रहते हुए भी इन गुणों से अछूते हैं। तात्पर्य भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र ये प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। अपने नियमों के द्वारा ये जगत बारंबार उत्पन्न और विनष्ट होता है। भौतिक शक्ति समग्र दृश्य जगत का सृजन पालन तथा संहार उन भगवान के आदेशों से करती है जो इस ब्रह्मांड में गर्भदक्षय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं किंतु भौतिक गुणों से अछूते रहते हैं। भगवद गीता में भगवान माया अर्थात बहिरंगा शक्ति को जो ये भौतिक जगत उत्पन्न करती है मम माया कहते हैं क्योंकि ये शक्ति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है। इन तथ्यों की अनुभूति उनकी व्यक्तियों उन्हीं व्यक्तियों को हो सकती है जो वैदिक ज्ञान में पटु हैं और कृष्ण महानामृत में उन्नत हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शिवपादाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्पादमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर वर्ष है जो कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं यहाँ पर। तो बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान जो है पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, लेकिन भगवान के स्वतंत्र होने का यह अनुभव, ये रियलाइजेशन उन्हीं को होता है जो कि शास्त्रों में बड़े पटु हैं, नंबर वन, एंड नंबर टू जो कि कृष्ण भावना भावित है। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो कि शास्त्रों में तो पटु हैं लेकिन कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाए, तो इसलिए दोनों कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, दैट वन शुड बी कृष्ण कॉन्शियस एज वेल एंड साइमल्टेनियसली वन शुड हैव द कंक्लूजन्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स रिवील्ड इनटू वन्स हार्ट। सो दैट इज बोथ दीज क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड, कि व्यक्ति का हृदय में कृष्ण भावना हो, दूसरा जो भगवत ध्यान में पटु हो। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ये बात समझ पाता है कि कृष्ण पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं, उनकी शक्तियां भी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो एक बार क्या हुआ, हमारे मंदिर द्वारका मंदिर में एक माता जी आई और बहुत ही भावुकता के साथ बोली, कहते तुम ये जो कृष्ण की पूजा कर रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो कि तुम जो कृष्ण की पूजा कर रहे हो। मतलब इतना दिल से, मतलब हमको लगा इतने साल हमें हो गए, इतना रियलाइजेशन तो हमें भी नहीं हुआ कि कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, पर माता जी को बहुत गहरा रियलाइजेशन है। तो पूछ लेते हैं, तो मैंने कहा माता जी ऐसा आपको मतलब क्यों भावना आ रही है ऐसी कि ये जो कृष्ण की पूजा करना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो शी सेड, देखो जितने दुख इसने देखे हैं उतने किसी ने नहीं देखे। इसका जन्म जेल में हुआ बेचारे का। आपका जन्म कहां हुआ था? मैंने कहा लखनऊ में किसी हॉस्पिटल में हुआ होगा ना। मैंने कहा हाँ, विवेकानंद क्लिनिक था, वहां हुआ था। इस बेचारे का नहीं हुआ, इसका तो जेल में जन्म हुआ है। और पैदा होते ही मां से बिछुड़ जाना, पैदा होते ही माता पिता से बिछुड़ जाना, उसके बाद मामा इतना क्रूर निकला कि मतलब एक गिफ्ट नहीं दिया है, क्या क्या भेजा है अपने भांजे को मारने के लिए। मां से अलग हो गया, माता पिता से अलग हो गया, चोरी करके खाना खाता है, बड़ा हुआ जिससे प्यार हुआ उसे शादी हो नहीं पाई, किसी और से शादी करनी पड़ी बेचारे को। जो दुख इसने देखे है ना, वो तो किसी ने नहीं देखे। इसके दुखों को देखने के बाद तो लगता है हमारा गम तो कुछ भी नहीं है, हमारा दुख तो कुछ नहीं है। ये प्रेरणा इतनी मिलती है इस कृष्ण के दुखों को देखकर, बड़ा दुखी है बेचारा ये, लेकिन पूजा कर रहे हो आप इसकी, तो इसको थोड़ा सांत्वना मिल जाती है कि कुछ तो अच्छा हुआ जिंदगी में कि भाई पूजा हो रही है। तो इसको देख के प्रेरणा मिलती है कि भाई हमारा दुख तो बड़ा कम है, इसका दुख तो बड़ा बड़ा दुख देखे है इसने, और आखिर में तीर मार के अंगूठे में बेचारा मर गया। मतलब हमारे पांव पे लगे हम तो फिर हैंडी क्लास लगा लें, बेचारे को तीर लग के बेचारे को होना था से होना था, किस क्या बिगाड़ा था इसने किसी का। तो इसीलिए बहुत अच्छा कर रहे हो आप कृष्ण की पूजा करके, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। तो इस प्रकार के अद्भुत रियलाइजेशन होते हैं, अद्भुत तो नहीं, भूतिया रियलाइजेशन है सारे के सारे। तो कृष्ण की जो है दिव्यता हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। जैसे कि जर्मनी में एक कॉन्टेस्ट हुआ था चार्ली चैपलिन लुक लाइक कॉन्टेस्ट. चार्ली चैपलिन लुक लाइक कॉन्टेस्ट की द वन हु लुक लाइक चार्ली चैपलिन द मोस्ट उसको ये प्राइज मिलेगा. तो कई लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया कि भाई चार्ली चैपलिन लुक लाइक कॉन्टेस्ट में. तो चार्ली चैपलिन ने जब अखबार में पढ़ा कि चार्ली चैपलिन लुक लाइक कॉन्टेस्ट हो रहा है तो इसने भी सोचा मैं ही भाग लेता हूँ. तो चार्ली चैपलिन ने भी भाग लिया इसके अंदर, चार्ली चैपलिन लुक लाइक कॉन्टेस्ट के अंदर, कि जो चार्ली चैपलिन की तरह दिखेगा उसको प्राइज मिलेगा. तो ये जब कॉन्टेस्ट हुआ क्या लगता है कौन जीता होगा इसके अंदर? आइडियली किसको जीतना चाहिए इसके अंदर बताइए? रॉन्ग. इसमें पहला प्राइज चार्ली चैपलिन को नहीं मिला, दूसरा प्राइज चार्ली चैपलिन को नहीं मिला, लेकिन तीसरा प्राइज चार्ली चैपलिन को नहीं मिला. कॉन्सोलेशन प्राइज दिया गया है चार्ली चैपलिन. तुम चार्ली चैपलिन जैसे नहीं हो, कोई और है जो चार्ली चैपलिन जैसे दिखता है. ऐसी ही कंडीशन इस संसार के अंदर है कि जो भगवान है, स्वतंत्र है, जो लीला करते हैं वो तो ना, और ये ऐरे गहरे नत्थु खेरे बाबे काबे चाबे खा कौन कौन है जो पांच थोड़ा भभूति निकाल देते हैं से निकाल, ये इंडिपेंडेंट लॉर्ड. तो इसीलिए वास्तव में भगवान की स्वतंत्रता को समझना ये भौतिक बुद्धि के परे की बात है. तो भौतिक बुद्धि जो है इसके दो पार्ट हैं, एक है इसका लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक है राइट हेमिस्फीयर. ऑन लेफ्ट साइड नथिंग इज राइट, ऑन राइट साइड नथिंग इज लेफ्ट. ऐसे दिमाग के साथ हम भगवान को समझने निकले तो भला कैसे समझेंगे भाई? तो कृष्ण जो है पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, ही इज इंडिपेंडेंट लॉर्ड, पूरी तरह से स्वतंत्र है. और ये जब लीला करते हैं तो ये अपनी खुद इनकी लीला शक्ति है, उसके वो उसके जो है वो ही इनकी इनके आदेशानुसार सारे कार्य करती है. जितनी भी लीलाएं होती हैं तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है इनकी लीलाओं की योग माया शक्ति वृंदा देवी, वृंदा देवी. और स्क्रिप्ट राइटर है कृष्ण हिमसेल्फ, इसके हीरो भी ये खुद है और स्क्रिप्ट राइटर भी खुद है कि कब क्या लीला करनी है. लेकिन कैसे करनी है? प्रोड्यूसर डायरेक्टर इज योग माया. और माधुरी लीला की जो माधुर्य जो रस है उसकी लीला के लिए वृंदा देवी. सो दैट मीन्स ही इज देयर कंप्लीटली इन कंट्रोल, दो ही अपीयर्स नॉट टू बी इन कंट्रोल. ओके, तो हालांकि भगवान का जो जो स्थिति है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है. तो सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो भगवान एक्चुअली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है. तो यहां जो है सिद्धांत की चर्चा हो रही है कि कृष्ण पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से स्वतंत्र है. और दूसरा पर्सपेक्टिव होता है लीला पर्सपेक्टिव, कि लीला के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो कृष्ण दिखाते हैं कि मैं तो डिपेंडेंट भी हूं, मैं तो निर्भर करता हूं अपने भक्तों के ऊपर, मैं निर्भर करता हूं, यू नो आई एम डिपेंडिंग. तो कृष्ण ऐसी कई लीलाएं करते हैं, जैसे कि भगवान की जो लीला है जिसमें वो डिपेंडेंसी शो करते हैं कि सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाना, वहां पर जो 64 कलाएं हैं उनको सीखना. ना कृष्ण जो है उनके पास सारा ज्ञान है लेकिन वो सांदीपनि मुनि के पास जा रहे हैं, वहां पर सब कुछ सीख रहे हैं. और सांदीपनि मुनि जो है बताया जाता है कि वो शिव जी के भक्त थे और जानबूझे कृष्ण ने सांदीपनि मुनि को चुना. क्यों? कि अगर अगर कृष्ण भक्त होते, वैष्णव होते तो पहचान लेते कृष्ण परम भगवान है. तो ये लीला चलती रही तो इसलिए उन्होंने शिव भक्त चुना. इंटरनली ही इज आल्सो वैष्णव दो सांदीपनि मुनि. इस तरह से भगवान श्री राम की लीला में भी जब दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि के आश्रम में श्री राम को छोड़ने, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को छोड़ने के लिए गए तो उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने कहा कि अब आप जा सकते हैं. तो दशरथ महाराज ने कहा कम से कम अपने बेटे को देख लूं कि मतलब हाउ दे आर परफॉर्मिंग, क्योंकि बड़ी खुशी होती है एक पिता को अपने बच्चों को देखकर कि मतलब क्षत्रियों का खून के रगों में दौड़ रहा है, ये देखने के लिए. जैसे कि जो धनुष है अगर छोटा बच्चा अगर उठाए राइट हैंड से उठा ले तो पिताजी को बड़ा दुख होता है, कहते हैं अरे ढक्कन निकलेगा, ये राइट हैंड से धनुष उठाते हैं लेफ्ट से उठाना चाहिए, है ना. जैसे भक्तों के भी अगर बच्चे होते हैं अगर वो छोटे भी होते हैं करताल उठा ले चैं 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 थोड़ा बजा रहे, कहते हैं अरे वैष्णव है जी वैष्णव है, भक्तों का खून दौड़ रहा है इसके रगों में, देखो कैसे छिन 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 बजा रहा है. तो बड़ी अच्छी बड़ी खुशी मिलती है माता पिता को ये देख करके कि मेरा बच्चा मेरा मेरा जिगर का टुकड़ा है. तो इस तरह से वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जब दशरथ महाराज है, दशरथ महाराज की बड़ी इच्छा थी कि देखो मेरे बच्चे क्या करते हैं. तो वशिष्ठ मुनि ने कहा अब आप जा सकते हैं, आपका काम हो गया, मैं छोड़ दिया आश्रम में आप जाइए. अरे कुछ तो देख लेने दो भाई, एक पिता का ये हक होता है, ये उसका हक है कि भाई वो बच्चों को देखे. बिल्कुल सही बात है, हर पिता का ये अधिकार है कि अपने बच्चों को देखे क्योंकि क्या कार्यकलाप कर रहे हैं उसके बच्चे. लेकिन सारे बच्चे जो है ना खीर खा के पैदा नहीं होते, लेकिन आपके जो बच्चे हैं ना ये खीर से पैदा हुए हैं. कौशल्य ने क्या खाया? खीर खाई. कैकेयी ने, सुमित्रा ने क्या खाया? खीर खाई. तो इसीलिए देखिए ये खीर खा के हुए, सारे बच्चे खीर खा के नहीं होते ना. तो खीर खा के जो बच्चे होते हैं ना उनको फिर पिता को इतना हक होता नहीं है, इसे आप जाइए. दशरथ महाराज ने कहा ये बड़ी दिक्कत होगी यार. तो उसके बाद फिर दशरथ महाराज जब निकल गए पूरी तरह से, जब दृष्टिगोचर नहीं थे वो जब हो गए, अब वशिष्ठ मुनि ने उसके बाद फिर राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की परिक्रमा की, उनको दंडवत प्रणाम किया कि प्रभु वैसे आप स्वतंत्र हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपकी लीलाओं में आपने मुझको ये रोल दिया है गुरु का, ताकि मैं ये गुरु का रोल कर सकूं आपकी लीलाओं में सहयोग देने के लिए, तो मैं ये कार्य ठीक से कर सकूं। तो इसलिए उन्होंने प्रणाम किया भगवान को। तो भगवान जो है किसी पे भी किसी तरह से डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन भगवान लीलाओं के अंदर डिपेंडेंसी दिखाते हैं। जैसे मुच्चकुंद का जब वध किया तो भगवान उसको मार सकते हैं, काले में। लेकिन मुच्चकुंद जो है उसको डिलीवर भी किया और उसके माध्यम से जो है मारा। तो भगवान जो है इस तरह से डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं। या जब ब्राह्मणों के पास है उनके, जब भगवान कृष्ण के जो गोप हैं उनको भूख लगी, अच्छा तो भूख लगी है तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, ऐसा करो वो जो ब्राह्मण है ना जो यज्ञ कर रहे हैं उनसे जाके भिक्षाटन मांगो, उनसे भीख मांगो, उनसे मांग लो कि उनसे कहना कि बलराम और कृष्ण मांग रहे हैं कुछ, अगर देना चाहो तो दे दो कुछ। बलराम जी का नाम ले क्षत्रिय है, क्षत्रिय फिर को दान देता है, लेकिन कृष्ण तो वैश्य है तो ना, तो इसलिए बलराम जी का नाम लेना शायद कुछ दे दें। तो यहां पर जो है ही शोइंग डिपेंडेंसी। उसके बाद जब उन्होंने मना कर दिया तो बोला अच्छा वो ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं ना उनसे जाके मांग लो। सो ही शोइंग डिपेंडेंसी। तो भगवान जो है लीलाओं के अंदर डिपेंडेंसी शो करते हैं। जैसे विग्रह रूप में जब भगवान आते हैं विग्रह रूप में ही शोइंग डिपेंडेंसी, ये निर्भरता दिखा रहे हैं। वैसे आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र है, लेकिन यहां पर वो निर्भरता दिखाते हैं कि मैं तो आपके ऊपर निर्भर हूं, आप ही को सुबह उठाना है। जब भगवान लेटे होते हैं भगवान को उठाया जाता है मंत्र को उच्चारण करके, प्रभु सुबह हो गई है उठ जा, मंत्र को उच्चारण होता है, एक एक करके सबको उठाया जाता है। श्रीमती राधिका को उठाया जाएगा, राधिका रमन जी को उठाया जाएगा, गौर नताई को उठाया जाएगा, कृष्ण बलराम को उठाया जाएगा, सबको एक एक करके उठाया जाता है। हम उठा रहे हैं भगवान को। तो इस तरह से भगवान जो है निर्भरता दिखाते हैं ये विग्रह रूप में जो भगवान आते हैं। तो ये भगवान का बड़ा विशेष रूप है जिसमें भगवान निर्भरता दिखा रहे हैं। तो निर्भर होने, हालांकि आत्मनिर्भर है लेकिन फिर भी इस रूप में क्यों आते हैं? इस रूप में भगवान इसलिए आते हैं, विग्रह अवतार में इसलिए आते हैं। पहला कारण यह है कि जब भगवान हम पे निर्भर होते हैं तो इस तरह से भगवान हमारा स्नेह आकर्षित करते हैं। जैसे माताएं देखती हैं अपने जो उनके बच्चे हैं जो उन पर पूरी तरह से निर्भर है, तो ऐसा बच्चा जो माँ पे पूरी तरह से निर्भर है ना, वो माँ का जो स्नेह है वो आकर्षित करता है। माँ सोचती है इसको खिलाएगा कौन, इसको पहनाएगा कौन, इसी देखरेख कौन करेगा, ये कौन करेगा मेरे बच्चे का। तो इस तरह से माँ का स्नेह बढ़ता है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा जो है माँ के ऊपर निर्भर है। तो इसी फीलिंग को भगवान लेके चलते हैं हमारे अंदर, भगवान के प्रति स्नेह जगाने के लिए भगवान बड़े विशेष अवतार में आते हैं, विच इज विग्रह अवतार। हालांकि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, तो हम देखते हैं कि भगवान ही पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए कुछ लोग जो कि जैसे यहां बताया गया कि जो प्रमाणिक शास्त्रों को नहीं पढ़ते वो ये बात नहीं समझ पाते कि भगवान किस प्रकार से आत्मनिर्भर है। जैसे कि दयानंद सरस्वती जब उन्होंने देखा कि शिव जी की मूर्ति के ऊपर चूहा जो है जा रहा है और यहाँ जो लड्डू पड़ा है वो खा रहा है, तो उन्होंने देखा अरे भाई ये चूहा जो है ये आ गया अंदर ये ऑल्टर के अंदर, ये तो बहुत गलत बात है। तो अगर चूहा अगर ऑल्टर में आ गया तो किसको हटाना चाहिए, चूहे को या शिव जी को? एक समझदार रहती हूँ, क्या करना चाहिए? चूहे को हटाना चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि थी दयानंद सरस्वती के अंदर, उन्होंने कहा चूहे तो महान है भैया, शिव जी को हटाओ यहां से। तो उन्होंने बोल दिया भाई मूर्ति पूजा ये तो गलत बात है, आइडोल वर्शिप, दिस इज आइडोलेट्री, ये हटा देना चाहिए। तो बजाय कि चूहे को हटाने के भाई दरवाजे के नीचे स्लैब लगा देते कारपेंटर को बोल करके, लेकिन वो नहीं लगाया, इतना भारी भरकम काम क्यों करें। शिव जी को वहां से हटा दिया भाई ये मूर्ति पूजा तो बहुत गलत बात है, भाई ये चूहा यहां पर कैसे आ गया। तो इस प्रकार से वो ये बात नहीं सोचा, ऑफकोर्स बहुत बड़ा अपराध था और इस अपराध की उनको सजा भी मिली, क्योंकि मृत्यु जो थी बड़ी कष्टदायक हुई थी दयानंद सरस्वती की। एक वैश्या थी और उसके कहने पे उसने जो इनके जो दास था इनका जो सर्वेंट था उनके दूध में क्रश करके जो ग्लास जो शीशा होता है वो मिला दिया था, तो वो दूध इन्होंने पिया था फिर दयानंद सरस्वती ने, फिर कांच से जो है इनके एक एक अंग कटता कटता कट कट के मरा। तो इसीलिए मरे क्यों? क्योंकि भगवान के जो इस दिव्य रूप को इस विग्रह अवतार को नहीं समझ पाए और ये मूर्ति पूजा के नाम पे इनको उड़ा दिया और चूहे को कहा नहीं चूहे तो यहीं रहे, चूहे देव You stay here, महादेव you go out। तो इसीलिए भगवान तो बहुत ही विशेष अवतार होते हैं जिसमें भगवान निर्भरता दिखाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कभी कभी कुछ जगहों पर ऐसे आक्रामक लोग भी होते हैं, जैसे औरंगजेब, इन्होंने अटैक भी किए, मंदिर भी तोड़ दिए, विग्रह भी तोड़ दिए। ऐसा कैसे भाई, भगवान अगर यहां पर स्वयं है तो ऐसा कैसे? भगवान तो आत्मनिर्भर है, शक्तिशाली है। ऐसा कैसे? तो भगवान ऐसा इसलिए करते हैं, इसी कई कारण है। एक कारण ये है कि भगवान को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर लीला करनी है, जैसे कि अगर वृंदावन से इनको जयपुर जाना है तो कहेंगे ठीक है औरंगजेब वो आ जाइए है अलाउड, लेकिन आगरा से जब ये वृंदावन की ओर चलेगा तो इसको 2 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे। सोचो आगरा से अगर पैदल भी चले तो भी हफ्ते भर में पहुंच जाए, इसको 2 महीने लग गए। तो इसने प्रार्थना की है अल्लाह ताला है खुदा, मैं वृंदावन में एंटर क्यों नहीं कर पा रहा, मुझको वृंदावन में एंट्री दी जाए अल्लाह। अब अल्लाह है कौन? कृष्णा है ना, कृष्ण ही अल्लाह है, क्योंकि इनकी शक्ति है अल्लाह दीनी शक्ति, इसलिए कृष्ण है अल्लाह जो अल्लाह को देने वाली है, अल्लाह दीनी अल्लाह दीनी, तो अल्लाह दीनी शक्ति दादा, तो ये अल्लाह, तो अल्लाह से प्रार्थना की, कृष्ण से ही प्रार्थना कर दी, इनको नहीं पता कि वृंदावन में एंट्री मिल जाए हमको। तो भगवान ने भाई कहा चंद्र एंट्री कर देता है, उससे पहले भगवान को जाना था करौली जाना था जयपुर जाना था, वो लीला करनी थी कर दी भगवान ने, और जहां पर रहना था वो ठहर भी गए, राधा रमन जी के रूप में रह भी गए, ठहर भी गए कि तेरे बाप का राज लगा यहाँ पर, वृंदावन में आकर तो कुछ करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर औरंगजेब जब आया भी तो राधा रमन जी को कुछ नहीं कर पाया वो, लेकिन बाकी मंदिर जो थोड़े फोड़े लेकिन वहां से ठाकुर जी पहले जा चुके थे। तो भगवान को अगर एक कार्य करना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, तो भगवान जो है इस तरह से लीला करते हैं कि ओके कभी कभी अटैक भी हो जाता है। और कुछ जगह देखते हैं कि ना विग्रह जो है बड़े मतलब मैले भी रहते हैं, ये हम पे निर्भर करते हैं कि हम जो है इसको इनको नींबू से साफ करें, इनको इसको कपड़े इनको कपड़े से साफ करें, ये तो मैले कुचैले रहते हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है कि विग्रह में जो है अगर डीटी में अगर गंदगी होती है, अगर आसपास गंदगी मची हुई है, तो वास्तव में भगवान के ऊपर गंदगी नहीं होती है, ये भगवान हमें हमारी चेतना दिखा रहे होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर इस पर अगर धूल जम जाए तो मैं कहूँ अरे राधिका रमन टेम्पल तो बड़ा गंदा हो गया, यहाँ तो धूल ही धूल है, खंभों पर धूल जमी हुई है, पंखों पर धूल जमी हुई है, भक्तों पर धूल जमी हुई है, यहाँ तो धूल ही धूल है, धूल ही धूल है यहाँ पे, तो काके यहाँ धूल नहीं है यहाँ धूल है। तो इसीलिए जब हमारी चेतना पे धूल होती है तो भगवान विग्रह में दिखाते हैं ये गंदगी मेरे ऊपर नहीं है, ये तुम्हारी चेतना में है। जैसे यमुना माई, यमुना माई इज ऑल प्योर, यमुना माई को कोई दूषित नहीं कर सकता, लेकिन हम देखते हैं उसके ऊपर झाग जमी हुई है, ठीक है उसमें केमिकल हो गए, अब तो यमुना दूषित हो गई, कृष्ण तेरी यमुना मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ऐसा नहीं है। ये यमुना माई हमारी चेतना दिखा रहे, दिल्ली वालों गंदी चेतना वालों ये तुम्हारी चेतना है, ये झाग जमी हुई जो है तुम्हारी गंदी चेतना है, असल में ये कर रहे हो तुम यमुना के साथ ये करोगे। यमुना माई इज ट्रांसेंडेंटल, शी इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल, पर ऑफ कोर्स वी शुड सर्व यमुना माई। और तीसरा कारण ये होता है कि भगवान जब देखते हैं कि अगर किसी स्थान पर भगवान के विग्रह की ठीक से सेवा नहीं हो रही, तो भगवान जब उस विग्रह में प्रकट हुए हैं तो उस विग्रह से अप्रकट भी हो सकते हैं, तो भगवान वहां से अप्रकट भी हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान वहां पर नहीं, क्योंकि वहां सेवा है नहीं, भगवान वहां है जहां सेवा है, तो वहां पर जहां पर सेवा होती है वहां भगवान मेवा देने के लिए रहते हैं, ही इज देयर। पर हाँ जहां पर सेवा नहीं होती, फिर वहां से जहां पर भगवान प्रकट हुए हैं तो वहां से अप्रकट भी हो सकते हैं। तो ये भगवान का बड़ा विशेष अवतार है, विग्रह अवतार, जिसमें भगवान डिपेंडेंसी दिखाते हैं, ही शोइंग निर्भरता, निर्भरता दिखा रहे हैं भगवान। लेकिन भगवान जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि इस जगत के स्वामी यही है, इसलिए यही नियंता है वास्तव में। एक बार अकबर ने सारे मिनिस्टर से पूछा कि बताओ ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूं लेकिन खुदा नहीं कर सकता। सवाल अगर उल्टा होता तो बड़ा आसान होता कि ऐसा कौन सा काम जो भगवान कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, बहुत सारे काम है, लेकिन ऐसा कौन सा काम जो कि मैं कर सकता हूं लेकिन भगवान नहीं कर सकते, अल्लाह ताला नहीं कर सकते, खुदा नहीं कर सकते, बताओ। तो सबने बड़ा जोर लगाया यार ये तो, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास हर बात का जवाब, जिसकी वीर में बड़ा बल है, बीरबल, बीरबल ने कहा जहां बना एक ऐसा कार्य है जो कि आप कर सकते हैं लेकिन खुदा नहीं कर सकता, और वो ये है कि यदि कोई आपके साम्राज्य में आपको कहा न माने तो आप उसको अपने साम्राज्य से बाहर निकाल सकते हैं, गेट आउट, लेकिन भगवान ये कार्य नहीं कर सकते। अगर कोई भगवान कहना ना माने, भगवान उसको अपनी सृष्टि से निकाल नहीं सकते कि मेरी सृष्टि से निकल जा तू, क्योंकि जहां निकालेंगे वो भी सृष्टि है भगवान की। तो भगवान जो है अपनी सृष्टि से किसी को निकाल नहीं सकते कि तू मेरा कहना नहीं मानता ना, गंदे आदमी, अपराध करता तू, दबा आ जा, निकल जा मेरी सृष्टि से, कहां निकालेंगे अपनी सृष्टि से। तो सृष्टि जो है, जो भी जो कुछ भी है, वो सब कुछ भगवान का ही है, और भगवान ही इसके नियंता है, भगवान ही इसके संचालक है। तो भगवान ही जो है अपनी ये प्रकृति बनाते हैं, जो बहुत ही प्रकृति है इसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन भगवान ये प्रकृति नहीं हो जाते। जैसे हम जूते पहनते हैं लेकिन हम जूते नहीं हो जाते, इस तरह से भगवान ने भी प्रकृति बनाई, लेकिन प्रकृति में प्रवेश करने के बाद, जैसे हमें बताया गया गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में, लेकिन उसके बाद भगवान इस प्रकृति के द्वारा छुए हुए नहीं है, उसके द्वारा अछूते हैं, वो भगवान जो प्रकृति है, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो है, ये भगवान को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते। भगवान जो है इनके प्रति हमेशा इनके परे रहते हैं। इसलिए भगवान जो है उनका नाम, उनको निर्गुण भी बोलते हैं। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि उनमें कोई गुण नहीं है, अदर उनका नाम होता है बैगुण, यानी उनमें कोई गुण नहीं है, बिना गुण के बैगुण या अवगुण, या उनमें कोई गुण नहीं है या गुणहीन। यहां बोला जाता है निर्गुण का मतलब है कि भगवान में ना सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है, भगवान इन तीनों गुणों के परे हैं। तो लेकिन भगवान यहां पर प्रवेश करते भी हैं, लेकिन फिर भी भगवान इस सृष्टि, इस प्रकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होते, इस प्रकृति के द्वारा बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। जैसे कि अगर कोई, वैसे बड़ा मुश्किल है हमारे लिए अगर ऐसा करें कि कोई हलवा बनाए और हलवा बना के क्या हलवे के अंदर भी चला जाए और फिर भी जो है हलवे के द्वारा प्रभावित ना हो और खुद हलवा ना बन जाए। हम हलवा बनाते तो उसके लिए हम कढ़ाई के बाहर रहते हैं, हम कढ़ाई के अंदर नहीं चले जाते, हम कढ़ाई के बाहर रह के हलवा बनाते हैं। अब ऐसा कोई हो कि वह हलवा बनाए और फिर हलवे में चला जाए और हलवा ना बने उसका, दिस इज वेरी ट्रांसेंडेंटल। ये कृष्ण ही कर सकते हैं कि इन्होंने प्रकृति का हलवा बनाया भी है, इसमें प्रवेश भी किया है, लेकिन ये प्रकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होते। तो यहां जो है ये बहुत ही प्रकृति भगवान के द्वारा संचालित होती है। तो भगवान के दो प्रकार के विस्तार होते हैं, एक तो वो जो कि भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं और दूसरे वो जो कि भौतिक प्रकृति के संपर्क में नहीं आते। जो भौतिक प्रकृति के संपर्क में नहीं आते वो है भगवान के विष्णु तत्व अवतार, जैसे नरसिंह भगवान, राम अवतार, जितने भी अवतार है इस तरह के, वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में नहीं आते। और भगवान के ऐसे भी विस्तार है जो कि भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, जैसे कि काल। काल भी भगवान का एक विस्तार है, उनकी शक्ति है, काल शक्ति है, लेकिन वो जो है वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है। शिवजी भी भगवान का विस्तार है, भगवान एक गुणावतार है, ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, इससे दूषित नहीं होते लेकिन इसके संपर्क में आते हैं। तो भगवान जो है इस प्रकार से भौतिक प्रकृति के संपर्क के हमेशा परे रहते हैं। ऑफ कोर्स कुछ लोगों का जो कर्म मीमांसा फिलोसफर है, जो कर्म मीमांसा फिलोसफी के अनुयायी है, वो ये मानते हैं कि सबसे ऊपर जो है ना ये लॉ ऑफ कर्म है, ये इवन भगवान के भी ऊपर है। भगवान भी आपको वो नहीं दे सकते जो कि आपके कर्मों में नहीं है, ये इनका मानना है, जो कि गलत है वास्तव में। इसलिए जो है वो कई तरह की स्टोरी बुक को करते हैं कि देखो इस दुनिया में सबको अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। यही कृष्ण भगवान जब आए थे त्रेता युग में, झाड़ी के पीछे छुपकर इन्होंने तीर मारा था बाली को, और फिर द्वापर युग में इनको भी कर्मों के फल भुगतने पड़े। जब ये झाड़ी के पीछे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे तो जरा नाम का आया हंटर, उसने मारा तीर और फिर इनका वध हुआ। जो छुपके तुमने मारा था तो छुपके तुमको मरना भी होगा। कर्मों से कोई नहीं बच पाया है भाइयों, कोई नहीं बच पाया है। ये लोग डालडे में ना पराठे खा खा के इनका दिमाग डालडा हो गया भाई। कर्मों के फल भगवान को भोगने पड़ेंगे। मूर्ख भटूरे आदमी, तूने कभी रामायण पढ़ी है? जब बाली का वध हुआ तो भगवान ने जस्टिफाई किया कि भगवान ने जो मारा है बिल्कुल सही मारा है। क्षत्रिय को ये, क्षत्रिय के पास ये अधिकार होता है कि वो छुप के जानवर का जो शिकार है कर सकता है। दूसरा, इक्ष्वाकु डायनेस्टी उस वक्त राज्य कर रही है, इसीलिए इक्ष्वाकु डायनेस्टी से ही है श्री रामचंद्र। इसीलिए अगर कहीं पर भी कोई अन्याय करता है, पाप करता है, सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था वाली ने, इसे वध करना बिल्कुल बनता है, कोई समस्या नहीं इसके अंदर। और तीसरा कारण क्या है कि जब बाली को ये वरदान प्राप्त है कि उसके सामने उसके जो भी शत्रु होगा उसकी 50% शक्ति उसमें आ जाएगी, 50% शक्ति, वो खुद ही बहुत बलशाली था, और 50% शक्ति जो है सामने वाले ओपोनेंट की इसमें आ जाएगी। लेकिन भगवान राम के अंदर कितनी शक्ति है? अनंत। अनंत डिवाइड बाई टू इज अनंत, इन्फिनिटी डिवाइड बाई टू इज इन्फिनिटी। तो ये भगवान के साथ तो होने वाला है, कि भगवान राम सामने आएंगे, भगवान राम की 50% इन्फिनिटी पावर इसमें आ जाएगी, भगवान में फिर भी इन्फिनिटी रहेगी। ये तो ब्रह्मा जी का वरदान ही वॉलेट हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी के वरदान को एज इट इज रखने के लिए श्री राम जी ने इस तरह से उनकी हंडी की। और उसके बाद फिर बाली ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, आपने जो किया न्यायप्रद था, इसीलिए मैं अपने पुत्र अंगद को मैं अब आपके सुपुत्र करता हूं। और जहां जरा की बात आती है, जब जरा नाम के इस हंटर ने श्री भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा, तो एक्चुअली ये तीर जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों को बस छुआ, पियर्स नहीं किया इसने, सिर्फ छुआ। और क्योंकि ऐसा कोई वर्णन नहीं आता कि जैसे जरा जो है सामने आया भगवान कृष्ण के, उसने कहा अरे इतना खून निकल रहा है, ये तीर तो बहुत ही अंदर चला गया, आपके अंगूठे का नाखून तो पूरा मतलब खराब हो गए, और फिर जो है खींच के तीर निकाला जरा ने, ऐसा वर्णन नहीं आता श्रीमद् भागवतम में। तो गए वहां पर, उन्होंने देखा अरे तीर जो है लगा है लेकिन वहां निकाले वर्णन नहीं आता, क्यों? रीजन भी उसने सिर्फ भगवान के चरणों को छुआ और भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा से है, क्योंकि मेरे को अपनी लीलाएं जो है अब क्लोज करनी है, तो इसीलिए ये मेरी व्यवस्था है वास्तव में। तो उसके बाद जरा ने है प्रणाम किया, प्रेयर्स ऑफर किए हैं भगवान श्री कृष्ण को, यहाँ तो 11th कैंटो में आता है, इसमें हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है। और वहां पर अगर ये मान के चले कि भाई ये बहुत कि भाई ये आके ये तीर मारा, उससे पहले यदुवंशी थे, पहले वो लड़ भिड़ के मर गए, उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरस्वती नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और वहां तीर चला और भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे में लगा और फिर भगवान का देहांत हो गया। अगर तो जहां पर 560 मिलियन क्षत्रिय अगर आपस में लड़े तो वहां तो खून की नदियां बह जानी चाहिए। ऐसी जगह पे हिरण घूम रहा होगा, ऐसी जगह पे हिरण घूमेगा, ऐसी जगह पे शिकारी शिकार करने आएगा जहां पर नदियां बह रही हो खून की, ऐसी जगह पर आएगा शिकारी, वह शिकार करते हैं कोई बात नहीं, नदी तो बह रही कोई बात नहीं, कोई ऐसी नदी होती है कोई खून की नदी होती है, लीस्ट बॉदर्ड। तो वास्तव में सारा युद्ध भी जो था वो काल्पनिक था, भगवान की रचना थी, इट वॉज एन इल्यूजन, देयर वॉज नो युद्ध अमंग द यदुवंशीज, ये भगवान का ये लीला समाप्त करने का तरीका था। और भगवान श्री कृष्ण को तीर रखना वो भी भगवान की लीला थी। लेकिन कर्म मीमांसा फिलोसफर्स ये मानते हैं कि भगवान की कार्यकलाप वो भी कर्म के ऊपर निर्भर है। आई एम सॉरी, भगवान पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, ये ना तो कर्मों पर डिपेंड करते हैं, ना किसी व्यक्ति पर डिपेंड करते हैं, ना किसी परिस्थिति पर डिपेंड करते हैं, ही इज ट्रांसेंडेंटल। एक बार व्यक्ति ने बोला यू नो कंस, कंस का दिमाग नहीं था, कंस का बिल्कुल दिमाग नहीं था, इसको आकाशवाणी हो चुकी है कि देवकी का आठवां पुत्र मारने वाला है और फिर भी वासुदेव और देवकी को एक ही रूम में रखा हुआ है। अरे भाई एक को अलग कारागार में रखो, दूसरे को अलग कारागार में रखो, जब कभी फिजिकल यूनियन होगी ही नहीं, अरे पहला बच्चा नहीं होगा, आठवें तो दूर की बात। कंस वाज सच अ नट, एकदम मतलब दिमाग नहीं है, तो दिमाग में आना चाहिए ना, और क्या, दूर दूर कारागार में रखो, एक एक को 840 में रखो, एक को कारागार में 225 में रखो, बस वो समझते हैं नहीं, यू आर सच अ नट मैन। सो डिवोटी ने बोला कंस वाज नॉट अ नट, यू आर अ नट। कंस पागल नहीं था, तू पागल है, तभी तू लीलाओं में नहीं है, कंस वाज इन लीला ऑफ द लॉर्ड। कंस जो है इवन दो ही इज प्लेइंग अ विलेनियस रोल इन द लीला, बट स्टिल वो जानता है कि भगवान की लीलाओं में कैसे सहयोग देना है, लेकिन तेरे ऐसे बांगड़ू लोग इनको पता नहीं कैसे लीला में सहयोग देना है, इसीलिए तू यहां पर इस संसार की लीला के अंदर है, यू आर नॉट इन कृष्ण लीला। कंस नोज हाउ टू कोऑपरेट इन कृष्णास लीला, इसीलिए वो भगवान की लीला के अंदर है, वो जानता है। तो इसीलिए भगवान जो है वैसे किसी भी स्थिति में किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते, भगवान पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर है भगवान। लेकिन हाँ लीलाएं करते हैं तो डिपेंडेंसी शो करते हैं, जैसे आज हमने सॉन्ग गाया शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित, तो शंकराचार्य जी कि मदर जब उनके आखिरी पड़ाव में थी जीवन के, तो किसी ने इन्फॉर्म किया कि देखो आपकी माता श्री जो है आखिरी समय में है, शी इज गोइंग थ्रू हर फाइनल टाइम्स, तो आप जाके अपनी माँ से मिल लो। तो शंकराचार्य जी आए अपनी माता से मिलने के लिए अपने सारे डिसाइपल्स के साथ और मिले अपनी माता जी से, और माता जी से जब मिले तो माता जी ने कहा देख शंकर अब आखिरी समय बाकी रह गया है, अब मुझे उनके बारे में बता जिनका तू भजन अपने हृदय में करता है। तो फिर शंकराचार्य ने कहा हाँ क्यों नहीं, ये जो निराकार ब्रह्म है, जो सर्वव्याप्त है, जो चिन्मय है, जो प्रकृति के तीन गुणों के परे है, जो कि सृष्टि का मूल है, तो मां ने कहा रुक, क्या कर रहा है शंकर, क्या कर रहा है, मैं आखिरी सांस लेने वाली हूं, इसमें भी तू मतलब तू मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बताता जिनका तू हृदय में भजन करता है। हाँ हाँ मां बिल्कुल यही बताता हूं मां, वो परमात्मा जो सबके हृदय में निवास करता है, जो कि सृष्टि को संभालने वाले हैं और सृष्टि के नियंता हैं, वो परमात्मा। फिर मां ने कहा रुक शंकर रुक, तू क्या कर रहा है शंकर, तू क्या कर रहा है, तू जानता है मेरी कोई भी सांस आखिरी सांस हो सकती है शंकर, तू क्या कर रहा है शंकर, तू उनके बारे में मुझे क्यों नहीं बताता जिनका तू अपने हृदय में भजन करता है। तो शंकराचार्य ने कहा ठीक है डिसाइपल्स तुम बाहर जाओगे जरा, डिसाइपल्स प्लीज गो आउटसाइड, को भार भी दिया, दरवाजा बंद किया, चुटनी लगाई, कहते मां तो अब सुन, अब मैं तेरे को बताता हूं कि भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर जिनका मुखमंडल जो है अत्यधिक सुंदर है, जिनकी आंखें जो हैं वो कमल के समान सुंदर है। वैसे तो किसी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी हम कभी कभी बोल देते हैं कृष्ण चंद्र चरण कमल हस्त कमल, लेकिन वास्तव में उनकी सुंदरता जो है वो अद्वितीय है, उनकी कृपा जो है अद्वितीय है। और इस प्रकार से शंकराचार्य जी ने ग्लोरीफाई करना शुरू किया कि नंद महाराज के जो पुत्र हैं, यशोदा मैया के जो पुत्र हैं, कृष्ण हैं, नंद नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण, राधा कांत कृष्ण, गोपीजन वल्लभ कृष्ण, और इस तरह से ग्लोरीफाई करने लगे। ये सुनते सुनते जो है उनकी माता श्री ने आखिरी सांस ली। और इस प्रकार से शंकराचार्य जी बाहर से उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, लेकिन हृदय से वो जानते थे कि वास्तव में सृष्टि के नियंता वगैरह है निश्चित रूप से कृष्ण, लेकिन वास्तव में वो दिव्य आनंद भी लेते हैं अपने भक्तों के साथ। और ये बड़ी गोपनीय चीज है, इसलिए यहां बताया जा रहा है कि बहुत कम लोग ही जान पाते हैं कृष्ण की दिव्यता को। बहुत कम लोग जान पाते हैं जो कि कृष्ण भावना भावित है, और दूसरा जो कि शास्त्रों में बड़े निपुण है वो ही जान पाते हैं कि वास्तव में भगवान की सत्ता क्या है, भगवान का जो स्थान क्या है, भगवान कितने विशेष हैं और किस प्रकार से वो लीलाएं करते हैं। वो आत्मनिर्भर हैं लेकिन फिर भी निर्भरता दिखाते हैं ताकि प्रेम का आदान प्रदान हो सके। सो लॉर्ड इज सर्टेनली द ग्रेटेस्ट एंड एट द सेम टाइम ही इज द स्वीटेस्ट। तो भगवान की स्वीटनेस भी है, भगवान की मधुरता भी है, लेकिन ये मधुरता रिवील होती है भगवान के शुद्ध भक्तों को। ओके, तो मैं यहीं पर विराम दूंगा। हरे कृष्णा। So I request His Grace Vamshi Vandan Prabhuji, our wonderful teacher. Prabhuji is also there to grace the assembly. So I seek Prabhuji's blessing. Prabhuji, any comments, any corrections? I'm your small student, whimsical student. Rukmini Prabhuji, anything? Okay, aur kisi ko prashn hai? किसी का कोई प्रश्न है एक, किसी का कोई प्रश्न है दो, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तीन। ओके, एक प्रश्न है। यस माता जी, कैसे आप प्रकट होते हैं, कैसे पता चलेगा? ऐसे कैसे पता चलता है, जैसे कि जहां पर कृष्ण उपस्थित है ना, वो एक्टिविटी बहुत ही आसान और सिंपल और हल्की हो जाती है। जैसे कि जप में अगर कृष्ण नहीं हो, माला करना कितना मुश्किल हो जाता है। अरे कृष्ण, अरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, अरे अरे, माला उठा ले, अरे राम, अरे राम, राम राम, अरे अरे। कोई चीज अगर कृष्ण छोड़ देते हैं, वो चीज बड़ी भारी हो जाती है, दैट बिकम्स वेरी हैवी। अगर हमारी बुक रीडिंग से कृष्ण चले जाए, बुक उठाना मुश्किल हो जाता है। शेल्फ में बड़ी किताब, प्रभु किताब निकालो ना, है निकालनी होती। ऑफकोर्स ये बहुत दिव्य, मतलब वाकई प्रभुपाद जी ने ना ये ग्रंथ बहुत दिव्य, मतलब रात को जग जग के प्रभुपाद जी ने लिखे है ना, बहुत महान है ये ग्रंथों की जय। तो जो चीज जहां पर कृष्ण नहीं होते, कृष्ण स्वयं बहुत भारी है, ही इज हैवी, पर कृष्ण जहां प्रवेश करते हैं वो चीज बड़ी हल्की हो जाती है। और चैंटिंग बिकम्स वेरी लाइट, स्मूथ, एफर्टलेस व्हेन कृष्ण इज देयर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। एक कृष्ण अगर जब को छोड़ दें, क्योंकि हम अपराध करते हैं, तो फिर वही कृष्ण, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण, हेवी हो गया ना, माला करना कितना हेवी हो गया। इस तरह से अर्चा विग्रह भी जो है वो गलत ग्रह हो जाते हैं, बोझ हो जाते हैं अगर कृष्ण वहां पे नहीं है। ठीक है, अगर विग्रह की सेवा करनी हो तो अगर उत्सुकता नहीं है, ठीक है, तो वहां वहां जा चुके हैं। सुना तेरी बारिश ना भोग लगाने का, थर्सडे आज देखो लगाना होता है। आज थर्सडे नहीं है, आज वेनेसडे, आज आपकी बारी है। अच्छा यार, मेरे को लगाना है भोग वगैरह। ओहो, अच्छा ठीक है, लगा लेते हैं। ओके, जय गुरु महाराज की जय, जय प्रभुपाद की जय, महाप्रभु की जय, जय गैया की, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले। आओ भोग लगाओ मोरे श्याम जी, श्याम जी, श्याम जी। तो विग्रह जब गलत ग्रह बन गए, दैट मीन्स कृष्ण हैज लेफ्ट दैट प्लेस। मैंने कृष्ण इज देयर, कृष्ण की उपस्थिति जो है चीजों को बड़ा स्मूथ, बड़ा एफर्टलेस बना देती है। लाइक जो भक्त सुबह सुबह बहुत अच्छे जपा करते हैं, उनका पूरा दिन मक्खन मलाई की तरह निकलता है, और जो रो पिट के करते हैं उनका पूरा दिन भी रो पिट के निकलता है। तो दैट मीन्स आपको ये पता करना कि भगवान जा चुके नहीं जा चुके, तो देखो कितना एफर्टलेसली सब कुछ चल रहा है. एंड दैट गिव्स फील. एंड ऑफ कोर्स कृष्णा इज सुपर सोल, तो भगवान परमात्मा रूप में बताए थे मैं जा चुका हूं, बाय बाय द वे यू आर सर्विंग मी. परत जमी हुई है यहां पर मिट्टी की, जो तुम्हें साफ नहीं समय नहीं मिल रहा, जा रही हूं मैं गोप्रेमानंदे. और किसी को सवाल? यस ओके. किसी को सवाल है? एक. किसी को सवाल है दो. किसी का कोई सवाल नहीं है ढाई. ओके
सर, क्यों कर रहे हैं?
हाँ जी,
मतलब अंदर से कृष्ण भावना मृत्य और बाहर से वैसे थे.
या शंकराचार्य ने ऐसा क्यों प्रचार किया कि भाई अद्वैतवाद का प्रचार क्यों किया? अद्वैत का बात का प्रचार करने का ऐसे शंकराचार्य जी का आने का पर्पस था, एक तो स्क्रिप्चर्स को वापस लेके आना, जो कि बुद्धिज्म के कारण जो है स्क्रिप्चर्स चले गए थे कि भाई शास्त्र जो है, देखो माइथोलॉजी है भैया, ये जो बलि बलि करते हो ना सब फालतू बातें, ये शास्त्र किनारे. शास्त्र को वापस लेके आना शंकराचार्य जी का एक मेन पर्पस ये था आने का, ठीक है. भक्ति देना भी नहीं था, लेकिन और साथ में ये भी फिल्टर आउट करना है कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है, ठीक है. तो इसके लिए भी शंकराचार्य है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को देखना हो कि ना किसके साथ मुझे दोस्ती करनी है, कहते हैं यार पता नहीं, यार पता नहीं किसी गलत आदतें हो, पता नहीं. ओके तो हम क्या करेंगे? अनाउंसमेंट करेंगे, सुनो सुनो सुनो, आज शाम को रजौरी में दारू पार्टी मेरी तरफ से फोकट में, जिसको आना है रजौरी पहुंच जाए. क्या क्या बोल रहे? फ्री में दारू पार्टी, अरे वाह क्या बात है, मदिरा पियेंगे भाई. तो जो लोग मदिरा पीने के लिए निकल गए, they are filtered out from those, अब मुझे किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है. यानी भाई ये बुरी आदत वाले लोग तो नहीं है, जिनको बुरी आदत वाले थे वो फिल्टर आउट हो गए, राइट. इस तरह से वैष्णवों में से अवैष्णवों को निकालना, वैष्णवों में से उन लोगों को निकालना जो कि कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, उनके रूप से ईर्ष्या करते हैं. तो इसलिए जो है शंकराचार्य ने भी एक घोषणा की, ओके नॉट दारू पार्टी, पर जब भगवान निराकार है भाई, नो आकार, वी कैन बिकम गॉड, वन विद गॉड. अच्छा ऐसा क्या? अपने आप वो लोग किनारे हो गए. तो ऐसे लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए आए थे श्रीपाद शंकराचार्य जी. पर इंटरनली वो जानते हैं मैं डिवोटी हूं, ये तो इन लोगों को फिल्टर आउट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए शंकराचार्य आए इनको अलग करने के लिए. और जब अपना भाष्य दिया उन्होंने, तो जानबूझ के अपने भाष्य में मिस्टेक्स भी किए उन्होंने, अपने भाष्य मिस्टेक्स रखी उन्होंने जानबूझ करके. जैसे कि वो अपने भाष्य में लिखते हैं शारीरिक भाष्य में कि जब मैं शारीरिक भाष्य लिख रहा था तो मेरे गुरुदेव निराकार ब्रह्म ज्योति से आए, मुझको आशीर्वाद दिया कि मैं ये शारीरिक भाष्य लिख सकूं, और वापस ब्रह्म ज्योति में चले गए. यानी कि ब्रह्म ज्योति में उनका अस्तित्व विलीन नहीं हुआ, उनके गुरु जो है निराकार ज्योति में एक नहीं हुए. इस तरह कई सारे फॉल्ट्स हैं जो कि उन्होंने जानबूझ के शारीरिक भाष्य में किए हैं, ताकि आगे जाकर निराकारवादी वैष्णव के द्वारा पिटाई खाएं, नॉट लिटरली बट संवाद विल हैपन, कॉन्वर्सेशन विल हैपन. तो ये भगवान शंकराचार्य, तो शंकराचार्य जी आने का ये पर्पस था, पहला स्क्रिप्चर्स को वापस लेके आना, दूसरा फिल्टर आउट करना, और तीसरा अल्टीमेटली डिवोटी के द्वारा डिफीट हो और फिर धीरे धीरे ये भी वैष्णव बने. सो लाइक दैट, सो दैट वाज द पर्पस ऑफ कमिंग ऑफ शंकराचार्य. इंटरनली ही इज अ हार्डकोर पक्का डिवोटी, उनके डिवोटी उनका भक्त होने से ऐसे प्रॉब्लम होता है कि 32 साल की उम्र के अंदर अंदर उन्होंने क्या मायावाद का प्रचार किया कि मतलब आज भी वी आर टू फेस पीपल विद सच डीप मायावाद इन देयर हार्ट. अफकोर्स पहले से मायावाद था, उन्होंने उसको और ठोक के कर दिया ताकि धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली कैन बी रेक्टिफाइड. सो दिस वॉज द पर्पस ऑफ कमिंग ऑफ शंकराचार्य. ही डिडंट कम टू गिव प्योर भक्ति बट ग्रेजुअली सो दैट पीपल कैन कम टू प्योर भक्ति. पर यस, इस तरह की उन्होंने कंपोजिशंस भी लिखी विच आर लाइक प्योर डिवोशन सर्विस. इतनी सुंदर कंपोजिशन है. लास्ट वर्स ही कहता है, आई प्रे दैट हूएवर रीड्स एंड रिसाइट्स दीज 8 प्रेयर्स विल बी फर्वेंटली डिवोटेड टू नंदा सन. Devoted birth after birth. Mama janmani janmani shwere bhavadat bhakti rahitu ki tvai is given by Shankaracharya who are in this verse. Okay, hum ye bhi viram denge. 9:05 ho gaye hain. Shrila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Samast ekatrit bhakta vrind ki jai. Shri Shri Radha Radhikaravan ji ki jai. Jagannath Pati Subhadramaiya Prabhu Sudarshan ki jai. Shri Shri Krishna Balaram ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hare Krishna.